विद्यार्थियों, छोटे से अंतराल के बाद फिर मैं आज के आपके पास मुखातिब हूँ रामचरितमानस के बाल कांड की अगली पंक्तियों के साथ। अगली पंक्ति है, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नववासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। विद्यार्थियों, आज फिर हम लोग आमने सामने हैं और यह बताने जा रहे हैं कि तुलसीदास जी संपूर्ण जगत को प्रणाम हाथ जोड़ कर करते हैं, चाहे वे 84,00,000 योनियों में अंडज हों, पिंडज हों, उद्भिज हों, जरायुज हों, चाहे जलचर हों, थलचर हों या नवचर हों, सब में राम का अंश राममय मानते हैं और उन सबको सिया राममय मानकर प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अगली पंक्ति है, जानी कृपा कर किंकर मोहु, समिति करहु छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कृपा की खान हैं, मेरे ऊपर कृपा करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करें। वे कहते हैं कि उन्हें अपने बल बुद्धि और उन्हें अपने ऊपर बल बुद्धि और भरोसा नहीं है, वे अपने को एकदम निसहाय समझते हैं और बार बार अपने कल्याण की कामना प्रभु से करते हैं, उनसे विनती करते हैं। अगली पंक्ति है, कहन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ न एक एक अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि वे श्री राम के गुणों की गाथा गाना चाहते हैं, वे अपनी बुद्धि को अत्यंत छोटा एवं सीमित समझते हैं, वे जानते हैं कि श्री राम का चरित्र अथाह है, इसमें अवगाहन करने की क्षमता मुझ में नहीं है, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि कैसे यह कार्य पूरा करूं, मैं तो मन और बुद्धि से कंगाल हूं, कृपया हे मनोरथ पूर्ण करने वाले स्वामी, आप मेरी यह छोटी सी मनोकामना पूर्ण करें, मुझ पर कृपा करें। अगली पंक्ति है, मति अति नीच ऊंच अरु आछी, चाहिए अमीय जग जुरै न छाछी, धमी है सज्जन मारी ढिठाई, सुनी नहीं बाल बचन मन लाई। विद्यार्थियों, यहाँ गोस्वामी जी अपने को अत्यंत नीच कहते हैं और अपनी रुचि को अत्यंत ऊंचा रखने वाले अपने को बताते हैं। बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि चाहत तो अमृत पाने की है, पर मिलता छाछ भी नहीं है। प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं कि मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे, जो मेरे बाल बचनों का मन लगाकर तथा कृपा कर प्रेम पूर्वक सुनेंगे, यह बार बार प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी की यह विनम्रता उनकी महानता का द्योतक है। ज्यों बालक कर तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हँसी हैं क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। विद्यार्थियों, यहाँ भी गोस्वामी जी उसी तरह बात करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह किसी बालक की तोतली बोली सुनकर उनके माता पिता बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में जो क्रूर कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वे ही इस बात की हंसी उड़ाते हैं कि उनका क्योंकि उनका काम ही होता है दूसरे के दोषों को उभारना, उनका अपना आभूषण होता है। अगली पंक्ति है, निज कवित्त कही लागननी का, सरस हो अति अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर साही, तेबर पुरुष बहुत जग माही। यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी रचना या कविता तो सबको अच्छी लगती है, सबको रसीली लगती है, चाहे वह रचना सरस हो अथवा एकदम बेकार। परंतु दूसरों की रचना सुनकर जो आनंदित होते हैं, जो खुश होते हैं, जो उसकी बड़ाई करते हैं, वे ही उत्तम पुरुष इस समाज में होते हैं। लेकिन वैसे लोग बहुत कम होते हैं, थोड़े ही होते हैं। अगली पंक्ति है, जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि संसार में नदियों और तालाबों के सदृश ही अधिक मनुष्य होते हैं, जो अपनी ही बाढ़ से, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं और इतराते हैं। परंतु समुद्र सा विशाल हृदय सज्जन पुरुष बहुत कम होते हैं, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ते हैं या प्रसन्न होते हैं। यहाँ भी गोस्वामी जी अच्छे और बुरे विचार वालों की चर्चा करते हैं। दोहा है, भाग छोट अभिलाष बढ़, करहुँ एक विश्वास, पाए सुख सुनि सब सुजन सब, खल कर यही उपहास। विद्यार्थियों, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भाग्य छोटा है परंतु इच्छा बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में उन्हें विश्वास है कि इस बात को जानकर मात्र सज्जन पुरुष आनंदित होंगे, सुख पाएंगे। जो दुष्ट स्वभाव के होंगे वो भला कब खुश होने वाले हैं, वे तो इसकी हंसी उड़ाएंगे, ठिठोली ही करेंगे। अगली पंक्ति है, खल परिहास होई है मोरी, काक कहीं कलकंठ कट होई है मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, हंसहीं बक दादुर चतकाई, हंसहीं मलिन खल विमल बात बत कही। विद्यार्थियों, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे संबंध में उल्टी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जब दुष्ट लोग हंसी उड़ाते हैं, परिहास करते हैं, तब मेरा नुकसान नहीं होता है, मेरा हित लाभ ही होता है। प्रकृति से उदाहरण देकर कहते हैं कि कर्कश ध्वनि करने वाले वायस अर्थात कौवा कोयल की मधुर ध्वनि की हंसी उड़ाते हैं। दूसरा और तीसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बगुले हंस की हंसी उड़ाते हैं, मेढक पपीहों को देखकर हंसते हैं। ठीक उसी तरह मलिन मन वाले जन दुष्ट लोग संतों कवियों की मधुर वाणी का मजाक उड़ाते हैं। अगली पंक्ति है, कवित रसिक रामपद नेहु, तिनकह सुखद हास रस एहु, भाषा भनिति भोरि मति भो मोही, हंसिवे जो हंसे नहीं खोरी। यहाँ भी गोस्वामी जी कहते हैं, इस कविता में कहते हैं कि जो लोग काव्य विरोधी होते हैं वो कैसे होते हैं। वे कहते हैं कि जो जन काव्य रसिकता से हीन लोग हैं, राम के चरणों में प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें तो कविता को देखकर हंसी ही आती है। वे अपनी क्षमता अक्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मेरी मति अत्यंत भोली है और मेरी रचना भी संस्कृत गर्वित न होकर देसी भाषा में रचित है। शायद इसीलिए वे सभी हंसी उड़ा रहे हैं, शायद उनका कोई दोष ही नहीं। यह एक अद्भुत विनम्रता तुलसीदास जी की है। अगली पंक्ति है, प्रभुपद प्रीति न सूझई नीकी, तिन्ही कथा सुनी लागी ही फीकी, हरिहर पद रतिमति न कुतर की, तिनकह मधुर कथा व रघुवर की। विद्यार्थी, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जो नासमझ हैं, जो प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं रखते हैं, उन्हें राम कथा सत्संग भी फीकी लगती है। इसके विपरीत जिनकी मति अच्छी होती है, जो भगवान विष्णु और देवेश्वर शिव के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनकी कुतर्क वाली बुद्धि भी नहीं होती है। वे सज्जन हरिहर में कोई भेद नहीं करते हैं, किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझते हैं, मात्र उन्हें ही रघुवर की कथा अच्छी लगती है। और ऐसे जन जो सत्संगी सत्संगति करते हैं, क्योंकि उनके लिए इससे मीठी कथा और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। अगली पंक्ति है, राम भगति भूषित जिए जानी, सुनिहरि सुजन सराई सुवानी, कविन हो नहीं बचन प्रवीण प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष राम भक्ति से पूर्ण होते हैं, सुंदर वाणी से प्रभु की सराहना करते हुए सुनते हैं, यहाँ भी अपनी विनम्रता दर्शाते हुए वे कहते हैं कि वाक्य रचना में कुशलता रखते हैं, वे तो सभी कलाओं और विधाओं से अपने को रहित मानते हैं। अगली पंक्ति है, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। विद्यार्थियों, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, बताते हैं कि काव्य रचना में अनंत अक्षर होते हैं, अनेक अलंकार छंद तथा विधान होते हैं, बहुतो भाव रस काव्य और गुण तथा दोष होते हैं, परंतु इनमें से किसी बात का ज्ञान उनमें नहीं है। वे स्पष्टता से कोरे कागज पर लिखकर शपथ के साथ कहते हैं कि यह बात सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। अगला दोहा है, भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी रचना सभी गुणों से रहित है। वे आगे कहते हैं कि उनकी रचना में जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, वह है राम भक्ति। यही विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष तथा विवेक के ज्ञान जिनके ज्ञान निर्मल हैं, मात्र वही इस रचना को काव्य को सुनने का कष्ट करेंगे। अगली पंक्ति है, एही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी पुरारी। विद्यार्थियों, यहाँ तुलसीदास जी यह घोषणा करते हैं कि जिनके रामचरितमानस में श्री रघुनाथ रामचंद्र जी का उदार नाम वर्णित है, क्योंकि यह अत्यंत पवित्र है और संपूर्ण वेद पुराणों उपनिषदों का सार तत्व है। उनका नाम ऐसा है कि वह मंगल का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। यही वह नाम है जिसे शिव और पार्वती रात दिन याद करते हैं, उनका जाप करते हैं। अगली पंक्ति है, भनिति विचित्र सुकवि कृत जो राम नाम बिन सोह न सोह, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। कभी यहाँ ये कहते हैं कि अच्छे कवि जो होते हैं, जिनकी अनूठी कविता भी राम के नाम के बिना है, वह शोभायमान नहीं होता है। एक उपमा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सजी संवरी सुंदरी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती है, सुंदर नहीं लगती है। अगली पंक्ति है, सबगुण रहित सुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहें सुनहिं बुधताहीं, मधुकर सरिस संत गुण गाही। ऊपर की कविता में जो आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, कविता को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि सब गुण रहित कविता भी राम नाम और उसके यश गान के कारण सबके सामने आदर पाता है।